الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول نبی کریم. معزز خواتین و حضرات، حضرت مفتی صاحب نے مشورہ کے بارے میں بات فرمائی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اسباب میں اثر اللہ جل شانہ ہی ڈال لیتے ہیں. یہ دو گوئے کے حدود ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے اوپر بزرگی جب طاری ہوتی ہے تو وہ اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ والی بات ہے کہ انسان اسباب کے ہی بن جائے اور مسبب الاسباب سے اپنا رابطہ توڑ دے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے انسان جو جائز اسباب ہے ان کو اختیار کر لے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے. لیکن اس کے بعد پھر ان اسباب کے اوپر نہ جائے، کیونکہ اسباب تو اسباب ہی ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پاک ہی اس میں اثر ڈالے گا، تو پھر اثر اس میں آئے گا. تو اس وقت پھر اللہ جل شانہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر فرمایا، سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو، اور اگر تو ہوتا تھند ہو سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے. سو ان کو معاف کر، ان کے واسطے بخشش مانگ، اور ان سے مشورہ لے کام میں. پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ اللہ پر، اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے. تو یہاں پر جو بات آ گئی کہ یہ بھی اسباب کے لحاظ سے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ اگر تو سخت ہوتا تو پھر یہ تیرے ساتھ نہ بیٹھتے، متفرق ہو جاتے. تو گویا کہ جو مقتدا ہوتے ہیں ان کو تندخو سخت دل نہیں ہونا چاہیے اسباب کے درجے میں، کیونکہ ظاہر اسباب میں جو اللہ پاک نے رکھا ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ بھی ماشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ہوا کہ ان کے ان جو اس قسم کی باتیں ہیں ان کو وہ دل پہ نہ رکھے، بلکہ ان کو معاف کرے، ان کے لیے بخشش مانگے، اور کام میں ان سے مشورہ لے لیا کرے. تو مشورہ جو ہے یہ بھی ایک سبب ہے. دل میں ڈالتا اللہ ہی ہے. تو جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ کسی طریقے سے دیتا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آسمان سے یعنی اڑتا ہوا ہمارے پاس آ جائے یا زمین سے اس طرح نکل آئے. یہ اس کے لیے تو اسباب اللہ نے بنائے ہوئے، ان اسباب کے اندر اللہ پاک اپنی قدرت کو چھپا دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اور پھر مشورہ کریں، تو جب مشورہ ہم کرتے ہیں تو مشورے میں کیا ہوتا ہے، ایک دل نہیں ہوتا، کئی دل ہوتے ہیں. اب ان میں سے کسی بھی دل پر اللہ پاک اچھی بات کو اتار سکتے ہیں، ان اللہ پاک اپنی طرف سے رحمت فرما کر جو اس کے لحاظ سے اچھا حل ہے وہ ان کے دل پر اتار سکتا ہے. جس وقت اللہ پاک نے کسی کے دل پر کوئی بات اتاری تو جب مشورہ ہو رہا ہوگا تو وہ بھی اپنی رائے دے دے گا. تو اس وقت جو امیر ہوتا ہے مشورے کا، اس کو اس کا کم از کم پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی ایک بات ہے. کیونکہ ظاہر بعض دفعہ صرف نہ جاننے کی وجہ سے، سامنے نہ آنے کی وجہ سے انسان کو وہ چیز نہیں ملتی. بعد میں اگر یاد آ جائے تو پھر پتہ چلتے، اوہ اگر یہ مجھے وقت پہ یاد آتا تو میں اس کے مطابق عمل کر لیتا. لیکن جس وقت مشورہ ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ پاک کسی کے دل پر اس چیز کو اتار دیتے ہیں، تو جب وہ کہہ دیتا ہے تو اس کے سامنے کم از کم جو امیر ہوتا ہے مشورے کا، اس کے سامنے وہ بات آ جاتی ہے، और जब बात आ जाती है तो चूंकि वो भी मुखलिस होता है, वो भी तो चाहता है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिले और अच्छी चीज़ को चाहता है, तो उसको जैसे ही उसकी अच्छाई मालूम हो जाती है तो वो उसको मान लेता है। इस वजह से कहते हैं कि जो मशवरा जब मांगे जब मांगा जाए तो उस वक्त जो दिल में आए बिला का मुकास बयान कर लें, अपनी तरफ से उसमें कोई तब्दीली ना करें। दिल में जो बात आए उसी पे ही, गोया कि मशवरे जिनके साथ हो रहा है वो भी अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो हो कि मेरे दिल में कोई बात डाले, और जिस वक्त कोई बात आ जाए तो उस वक्त मतलब वही बयान कर ले। अलबत्ता ये अलग बात है कि इंसान के साथ चूंकि नफ्स भी होता है और नफ्स की शर का शर भी होता है, और हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ में जानिब लाए, कौन सी चीज़ हमारे नफ्स की वजह से, कौन सी चीज़ शैतान की तरफ से है। लिहाजा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि कहीं ऐसी बात ना हो कि मैं मेरी बात नफ्स के मुताबिक हो, और मतलब यह है कि मैं इस पर जोर दे दूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का नुकसान ना हो जाए। तो इस वजह से मशवरा तो दे दिया करे जो दिल में आए, लेकिन उस पर डरा करे कि कहीं ये नफ्स की वजह से ना हो, शैतान की वजह से ना हो। लिहाजा अगर वो मशवरा ना माना जाए तो इस पर खुश हो जाया करे कि अच्छा हुआ कि मेरा मशवरा नहीं माना गया, अगर माना जाता और मेरे नफ्स की वजह से होता तो मुझे तो नुकसान हो जाता, तो लोगों को भी नुकसान हो जाता। तो इस वजह से जिस वक्त इंसान मशवरा दे तो इखलास के साथ जो दिल में आए वो दे दे, लेकिन जिस वक्त मशवरा माना न जाए तो फिर उसको दिल से तस्लीम कर ले कि इसमें मेरे लिए खैर था, उसके ऊपर ज़िद ना करे, क्योंकि ये काम अल्लाह के लिए है, ये काम अपने लिए थोड़ा है, अपने नफ्स के लिए थोड़ा है। हमारे लिए बेहतरीन मिसाल जो हदीस शरीफ में मतलब जो आसार सहाबा में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी एक मशवरे में मौजूद थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी भी इस मसले में एक राय है, अगर ये दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर मेरी तरफ से और मेरे नफ्स की तरफ से और शैतान मेरे शैतान की तरफ से। अब देखिए, यानी गोया कि खुद अपने बाप से कह दिया कि अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर मेरे तरफ से, फिर जो है ना मतलब अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो अल्लाह की तरफ गलत चीज़ की निस्बत भी नहीं फरमाई, और साथ साथ ये कि इस पर गोया कि जोर भी नहीं दिया कि मैं तो इसलिए करता हूँ कि जो है ना चूंकि ये जो है ना मेरे दिल में है, लेकिन चूंकि पता नहीं है कि ये जो है ना वो अल्लाह की तरफ से ही है, लिहाजा इस पर मैं जोर नहीं देता, अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर शैतान की तरफ से, मेरे नफ्स की तरफ से। तो इससे पता चल गया कि हमें इसमें जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आखिर में फिर आता है कि फैज़ा आज़म तफतवक्कल अल्लाह, और जिस वक्त तू फैसला कर ले, कस्त कर ले किसी काम का, तो फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि उसमें खैर अल्लाह ही डालेगा। तो मशवरा करने में खैर होता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इस्तिखारा भी एक तरीका है अल्लाह पाक से मांगने का, और मशवरा भी एक तरीका है अल्लाह पाक से मांगने का। दोनों तरीके अल्लाह ताला से मांगने के हैं, फ़र्क इसमें यह है कि मशवरा इज्तिमाई चीज़ों में ज़्यादा बेहतर होता है, उसकी वजह से इस्तिखारा जो है ना, मेरा इस्तिखारा दूसरों पे तो हुज्जत नहीं है, वो तो मेरे ऊपर हुज्जत हो सकता है, तो मैं अपने बारे में तो इस्तिखारा कर लूँ, लेकिन अगर इज्तिमाई मसला है उस इज्तिमाई मसले में मेरी बात की तो कोई हैसियत नहीं होगी। हाँ, मुझसे अगर मशवरा मांगा जाए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इस्तिखारा जो मैं करता हूँ तो मुझ पर सिर्फ अपनी बात में हुज्जत है, दूसरों की बात में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा बुजुर्ग फरमाते हैं कि इज्तिमाई कामों में मशवरा अफजल है और इनफरादी कामों में इस्तिखारा अफजल है। इनफरादी कामों में इंसान इस्तिखारा कर ले तो उसकी वजह यह है कि इनफरादी काम ऐसे होते हैं कि जिसमें जिससे मशवरा मांगा जाता है, ज़रूरी नहीं कि उसको पूरी मालूमात हो, ज़रूरी नहीं कि उसको पूरी मालूमात हो, तो इन मुमकिन है कि आपको गलत मशवरा दे दे, असबाब की दारी की बात कर रहा हूँ। और मशवरे में ये बात होती है कि मेरा मतलब इज्तिमाई काम में होता है कि मैं अगर मतलब इस्तखारा करता हूँ तो वह इस्तखारा दूसरे पर हुज्जत नहीं है, तो लड़ाई हो जाएगी। तो गोया कि मशवरा में इंसान इज्तिमाई कामों में जो है ना मतलब हो जाए ना वो कर ले ताकि सबकी बातें आ जाएँ, सबके सामने आ जाएँ, और फिर उसमें से जो भी बेहतर हो उसको ले लिया जाए, लेकिन जो इनफरादी काम है उसमें इस्तखारा इसलिए अफजल है कि वो जो है ना मतलब सारी चीज़ें मालूम नहीं होती। ये बात एक बात होती है, बाद लोग मशायख के पास आते हैं, उनसे मशवरा करते हैं अपने इनफरादी काम के बारे में। इसमें यह बड़ा मसला होता है कि असल में फ़रार इंसान इख्तियार करना चाहता है। फ़रार इस तरह है कि मैं अपने काम दूसरे पर डालना चाहता हूँ, मैं खुद ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहता, तो इस वजह से अपने इनफरादी मशवरा जो मामलात का जो मशवरा करता है, यानी उसमें इस बात को देखना चाहिए आया मेरे शेख को इन चीज़ों के बारे में मालूम है या नहीं है। मसलन कारोबार का मसला है, आप ज़रूरत तो नहीं कि हर शेख कारोबार को जानता हो, एन मुमकिन है उसने कभी कारोबार किया ही ना हो। अब वो कारोबार में मशवरा देगा तो साहब मशवरा तो नहीं होगा, ज़ाहिर मतलब है कि उसके बारे में उसको मालूम नहीं। वही वही वाली बात है ना कि इसबाब की बात है, तो इसबाब की लाइन में अगर देखा जाए तो कारोबार जो है वो एक तजुर्बा है, जिसको उसका तजुर्बा होगा तो वही उसके बारे में दे सकेगा। मसलन मैं बीमार हूँ, अब मैं जो है ना मेरे शेख के पास चले जाऊँ, मेरे शेख जो है ना वो मौलवी है, या मेरे शेख इंजीनियर है, या मेरे शेख जो है ना वो दुकानदार है, जो भी है, तो कोई एक ही है ना। अब उससे मैं मशवरा मांगू या ना, मतलब ये है कि कारोबार का मांगू, तो अब कारोबार का तो अगर वो इंजीनियर नहीं, वो बीमारी का मांगू तो वो डॉक्टर तो नहीं है, तो मशवरा मुझे कैसे देगा? अगर देगा तो उसके लिए जायज़ भी नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर जिस चीज़ का आपको इलम नहीं है तो आप उसके बारे में मशवरा कैसे दे सकते हैं। अब ये जो बात है, अब कल भी मेरे पास आए थे एक साहब, वो अपनी बीमारी, अपने बेटे की बीमारी के बारे में, तो मैंने को डॉक्टरों की तरफ रेफर कर लिया, ज़ाहिर मतलब ये फील्ड उनका है, मेरा तो नहीं है, अब इस बारे में मैं क्या क्या कह सकता हूँ, तो डॉक्टरों के बारे में रेफर किया। हाँ अलबत्ता मैंने अपने इस लिहाज से तजुर्बे का मशवरा ज़रूर दिया कि सेकंड ओपिनियन ले लो, एक डॉक्टर ने अगर कहा है तो दूसरे डॉक्टर से भी पूछो, मुमकिन है आपको ज़्यादा बेहतर बात में, तो एक मशवरे के लिहाज से बात हो गई। लेकिन बहरहाल ये बात है कि मैं उसमें ये नहीं कह सकता था कि तुम ये करो तुम ये करो, उसकी वजह यह है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इस तरह अगर मैं मुफ्ती नहीं हूँ और मुझसे अगर कोई मसला पूछता है, तो अगर वो मुझसे पूछता है तो वो भी गलत करता है, और अगर मैं इस बारे में जवाब देता हूँ तो मैं भी गलत करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर मैं मुफ्ती जो नहीं हूँ, तो मेरे मेरा फील्ड तो ये नहीं है, तो लिहाजा मैं उसको मुफ्ती की तरफ ही रेफर करूँगा कि आप मुफ्ती साहब से। हाँ मुफ्ती के बारे में उसको मशवरा दे सकता हूँ कि कौन से मुफ्ती साहब से पूछें, वो तजुर्बे की बात है। मसलन जैसे अभी फरमाया हजरत ने कि बेशक उसके पास इलम हो लेकिन उसके पास इतनी समझ ना हो कि वो सही फैसला कर सके, तजुर्बे से मालूम हो जाता है। तो अब ये क्या हमें मालूम होता है तजुर्बे से कि कौन सा मुफ्ती ज़्यादा किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं या मसला बता सकते हैं। तो अब चूँकि ये तजुर्बा चूँकि है कि हर किसी को हो सकता है, तो इस बारे में हम कह सकते हैं अच्छा फ़लाँ मुफ्ती से पूछो, फ़लाँ मुफ्ती से पूछो, ये बात तो मैं, ये तो बात तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये बात है कि वो मुफ्ती का पोजीशन ही मैं ले लूँ और मैं जो है ना मतलब है कि वो मुफ्ती बन जाऊँ, तो ये तो गलत होगा। बैनी इसी तरीके से अगर मुफ्ती से कोई अपने रूहानी मसले को डिस्कस कर ले, तरबियत के बारे में डिस्कस कर ले, अगर वो शेख नहीं है तो फिर ये भी जायज़ नहीं होगा। अगर वो शेख नहीं है तो ये भी, क्योंकि ज़ाहिर मुफ्ती ज़रूर है, मसला बता सकता है, लेकिन चूंकि वो शेख नहीं है लिहाजा वो उस तरतीब को नहीं जानता जिस तरतीब से मतलब उसको मिसाल के तौर पर ये दिल है, नफ्स है और अक़ल है, इनकी आपस में जो कम्बिनेशन है उसमें कौन सा तरीका अख्तियार किया कि इसकी बेहतरीन कम्बिनेशन, ये तजुर्बे से ताल्लुक रखता है और फ़न है, ये कोई गप तो नहीं है ना कि कोई हर एक उसमें बात कर ले, तो ये तो फ़न है। तो अब ये जो इस फन को जानता है तो वही इसके बारे में बात कर सकता है, बाकी लोग तो इसमें बात नहीं कर सकते। तो जिस तरह मैं आराम के साथ कह सकता हूँ कि आप मुफ्ती साहब के पास चले जाएं, मुफ्ती साहब से मशवरा कर लें या उससे बात पूछें क्योंकि ये फील्ड उनका है, इस तरह मुफ्तियों को भी साफ दिल के साथ कहना चाहिए कि हमारे फील्ड नहीं है ये, जो है ना मतलब है कि सिलसिले में आप मशायख से पूछें, और वो भी अपने तजुर्बे के बारे में मशायख के बारे में मशवरा दे सकते हैं कि फलां साहब ज़्यादा बेहतर है इस मसले में, क्योंकि वो जो ना, मैं ख़ुद मौलाना अशरफ साहब तो जो हमारे शेख थे, उनसे अपने घर के मसले के बारे में डिस्कस किया, हज़रत तो आलिम भी थे, ज़ाहिर मुझे इल्म के लिहाज से भी मशवरा दे सकते थे, तो हज़रत ने सीधे ही मुझसे फरमाया आप हलीमी साहब से पूछें, आप हलीमी साहब से पूछें, क्यों? वजह यह कि वो आपके रिश्तेदार है, वो आपके ख़ानदान की बातें जानता है, और जो उतार चढ़ाव ख़ानदानों में होता है वो जानता है, होशियार आदमी, यही फरमाया होशियार आदमी आपको सही मशवरा देगा। आपको सही मशवरा दे, आपकी बात बिल्कुल सही थी, मशवरे की बात थी। हजरत ने मतलब गुरु की बात फरमाई कि ऐसे शख्स के मशवरा कर लो जो आपके मामला जानता हो, नंबर एक, दूसरा होशियार भी हो, ताकि जो है ना मतलब ये है कि वो समझदारी के साथ फैसला कर सके। तो माशाल्लाह फिर उसके बाद जितने भी हमारे घर के मामले थे उसमें मैं हलीमी साहब से मशवरा किया करता था, और हलीमी साहब मुझे बिल्कुल सही सही मशवरा दिया करता था। हाँ जी, तो ये यही बात होती है। अब ज़ाहिर मतलब जिस तरतीब पे अल्लाह पाक ने जो असबाब बनाए हुए हैं उन असबाब को इख्तियार करना चाहिए, और जिस वक्त असबाब इख्तियार करके कोई फैसला कर ले, फैज़ा आज़म तफतवक्कल इन्नल्लाहुल्मुतवक्किलीन, बात फिर अल्लाह पे आ गई। जिस वक्त तुमने फैसला कर दिया, कस कर लिया, फिर ये ना कहो कि मैंने अच्छा फैसला कर लिया अब ये ठीक है, नहीं, अब अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे भरोसा कर लो, अपने आप पे भरोसा ना करो, अपने अकल पे भरोसा ना करो, अपने इलम पे भरोसा ना करो, भरोसा किस पर होगा? अल्लाह पर होगा। ये वाली बात है, अल्लाह जल्ल शानू हम सबको हर चीज़ के अंदर एतदाल, समझदारी और हिम्मत से काम लेने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।